वो कहते हैं ना कि गुत्थियों को सुलझाता है, तो फिर अगली आयतों में इंसान को कायनात पर गौर व फिक्र की दावत। वस्समाई ज़ातिर रज, कसम है बारिश वाले आसमान की। देखिए आमतौर पे क्या होता है, कसम शुरू में आती है और एक ही दफा सारी आ गई और फिर जवाब है कसम। इधर आप देख रहे हैं कि पूरी सूरत में कसमें ही चल रही हैं। कसम खाई, फिर एक बात बता दी, दूसरी बात बता दी, और अब दोबारा कसमें खाई जा रही हैं कि बारिश वाले आसमान की कसम। ये जो जाति वाली, रज रजू, बारिश इन आसमान की तरफ से आती है ना, तो रजू का लफ्ज उर्दू में बोलते हैं ना, ये वही है। मानी क्या, लौटना पलटना। बारिश भी बार बार आती है, पलट पलट कर आती है, इसलिए बारिश को रज कहा गया। इसी तरह बास कहते हैं कि बादल समंदरों से ही पानी लेता है और फिर वही पानी वापस जमीन पे लौटा देता है, एक सर्कल है ना, इसलिए इसको रज कहा गया, जाते रज, बारिश को कहा गया। इसी तरह बास कहते हैं कि अरब लोग बारिश को रज कहते थे क्योंकि वो बार बार होती थी। जो भी है, ये बारिश की कसम खाई गई। वलर्दिजाति सद, और फटने वाली जमीन की कसम। जमीन कौन सी, जाति सद। देखिए सब मुअन्नस के सीगे हैं, और आप कायनात पे गौर व फिक्र जब करते हैं तो आपको ये तो खूब अंदाजा हो जाता है कि किस तरीके से फीमेल सीगों में अल्लाह ताला ने दुनिया की सब अहम चीजों को रखा। जमीन, आसमान, शहद की मक्खी, चींटी, और अक्सर चीजें जिनका तذکرہ कुरान पाक में हमने पढ़ा है ना, वो सब फीमेल के सीगों में। यहां भी ये सब ता जो है ये मुअन्नस के हैं कि फटने वाली जमीन की कसम। अब सवाल पैदा होता है कि जमीन फटने वाली कैसे और कब और क्यों। तो पहली बात तो देखिए, जमीन ना फटे तो पौधा बाहर कैसे आए। जमीन फटती है तो छोटा सा पौधा बाहर आता है ना, ठीक है, फिर जमीन ना फटे तो चश्मे कैसे बाहर आए। और अगर जमीन ना फटेगी तो सारे मुर्दे कैसे बाहर आएंगे। जमीन को जाते सद कहना हकीकत में जमीन के सारे गुण खोल दिए। जमीन ना फटे तो मादनियात कैसे बाहर आए, जमीन ना फटे तो गैसेस कैसे बाहर आए, और जमीन ना फटे तो ऑयल कैसे बाहर आए। इन बातों पे वाकई अरब लोग बेबस हो जाते थे। मुझे तो अपना आप ऐसे लगता है अंदर से कि बस मैं एक लफ्ज नहीं बोल सकती। कभी सोचा आपने कि जमीन जाते सद है, ये फटती है, और अगर जमीन पत्थर की होती या लोहे की होती और इसके अंदर जो था बस अंदर रहता, तो क्या इस कायनात का निजाम चल सकता। तो जो जमीन की कैफियत है ना, वही हमारे दिलों की भी कैफियत है। कुरान पाक में भी और अहादीस में हम पीछे बहुत दफा देख चुके कि लोगों, तुम्हारे दिल मिट्टी की तरह, जमीन की तरह, कभी बारिश की तरह। ये दिल भी पत्थर ही होते हैं। अगर हमारे दिल नहीं फटते ना, तो याद रखिए इसकी खैर बाहर नहीं आती और गंदगी भी नहीं जाती बाहर। अफमन शराह अल्लाह सदरहु लिल इस्लाम, क्यों फरमाया अल्लाह ताला ने कि बस जिसका सीना हमने खोल दिया फिर उसके लिए नेकियों पे चलना आसान है। कुरान क्या करता है, वही काम करता है जो बारिश जमीन पे करती है। सूखी मिट्टी होती है, ऐसे ठिकरी होती है, बारिश पड़ती है तो पहले मिट्टी गीली होती है, फिर हल्की सी कहीं भी लगाएगा ना किसान तो उसको खोलना आसान हो जाता है। कुरान जब दिल पे पड़ता है ना, तो दिल के फटने और दिल के खुलने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इसीलिए देखिए, कुरान पढ़ने के बाद कुछ और हो ना हो, इंसान को अपनी तो फिक्र लग जाती है। ये अलग बात है वो बहुत फंदे हाँ बने, बहुत दुनिया में जाके खुशियां मनाए, कुरान पढ़ लिया, ये कर लिया, लेकिन वो अंदर एक गिरा तो पड़ जाती है कि भाई अब मेरी खैर कोई नहीं, मैं बच गई तो बड़ी बात है, वरना नई बात बनेगी। इसलिए इंसान अपने दिलों को चेक करे। फरमाया कि कुरान पढ़ोते हुए रो लो, रोना ना आए तो रोने वाली शक्लें बना लो। क्योंकि जो लोग कुरान की बारिश से नहीं फटते ना, वो ये साबित कर देते हैं कि हम नहीं फटेंगे। फिर उनको कोई दुनिया का गम फाड़ता है, कोई सदमा, कोई हादसा, कोई करीबी की मौत, कोई जवानी की मौत, कोई बच्चे का गम, कोई शौहर की मौत, फिर इंसान फट पड़ता है। सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फहिय कल्हिजारा, अल्लाह कहते हो अशद्दु कसवा, तुम तो पत्थरों से भी सख्त हो गए हो। ये कुरान की बारिश पड़ी थी तो उमर का दिल फट गया और ला इलाहा इल्लल्लाह उनकी जुबान पे आ गया। अल्लाह कहते सोचो, ये संजीदा चीज़ है, जिस तरह आसमान से बारिश का बरसना और जमीन का शक होकर नबातात अपने अंदर से उगलना कोई मजाक नहीं है, इसी तरह याद रखो कुरान जिस चीज़ की खबर देता है कि इंसान को एक बार अपने रब की तरफ पलटना है, ये भी कोई हंसी की बात नहीं है, ये एक मजाक की बात नहीं है, ये ऐसी बात नहीं है कि जिसको सुन के तुम ठट्ठे उड़ाओ और मजाक करो और हंसो और बोलो और वहां से उठ जाओ। इसीलिए अगली आयतों में आप देखेंगे कि अंदाज बिल्कुल एकदम बदलता हुआ दिखाया जा रहा है। कहां से कहां कुरान हमारी तवज्जो ले जाता है, एक पे अभी तवज्जो हो रही होती है तो अगली चीज में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नहु लकौलुन फसल, बेशक ये कुरान अलबत्ता दो टोक फैसला करने वाला कलाम है। इन्नहु, हु से मुराद कुरान, ये कुरान भी फैसले करवाता है। वमा हुवा बिल हज़्ल, ये हंसी और बेफायदा बात नहीं है, ये कोई टाइम बिंग चीज नहीं है। इसलिए कुरान की महफिलों में हंसी मजाक होता देखकर मुझे अक्सर याद याद आती है। बाज़ दफ़ा सब हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, कोई इधर से उधर से चुटकुला छोड़ते हैं और लोग कहते हैं मजा बढ़ाते हैं, वहां जाके पाबंदियां ज्यादा नहीं है, पाँव पसारे, खोलें, बैठे, टेक लगाएं, बच्चों को साथ खाने खिलाते रहें, फोन भी सुन लें बीच में और फिर कहते हैं चलो पढ़ते हैं, लेकिन उसका असर किधर आता है? अल्लाह कहते हैं इन्नहु लकौलुन फसल, ये फैसले करवाती है किताब। देखिए कुरान की ये खूबी, फसल एक होती है ना, फसल को फसल क्यों कहते हैं, क्योंकि फसल अलग कर देती है ना जमीन से बीज को, फटती है जमीन तो बीज निकलता है, फिर एक वक्त आता है कि उसके ऊपर एक पौधा लगता है, फिर एक वक्त आता है कि वो फसल की सूरत में खड़ा होकर तैयार हो जाता है। इसी तरह इंसान के अंदर बहुत खैर होती है, आप सब में भी खैर थी लेकिन आपको खुद भी नहीं पता था। कई साल तक हम माइंस की तरह फिरते रहे, हमें खुद नहीं वल्ला ही पता चला कि हमारे अंदर कोई ऐसी नफे वाली चीज़ है कि किसी को दें। जूं ही कुरान की बारिश पड़ी, आपका सारा सोया हुआ जो अंदर का मवाद था ना वो बाहर आ गया, आपकी स्किल्स बाहर आ गई, अल्लाह ने आपकी पर्सनैलिटी के अंदर कितने धब्बे थे और कॉम्प्लेक्सेस थे उनको निकाल के फेंक दिया। अब देखते जब बारिश होती है ना तो जहाँ फसल उगती है ना तो वहाँ झाड़ झंकार भी बहुत उगती है, बस माली के हाथ चाहिए होते हैं कि वो उसको ख़त्म कर दे और उतार के फेंक दे। बिल्कुल इसी तरह होता है जब हम कुरान से जुड़ते हैं और ये इसकी बारिश को दिल पर लेते हैं, तो ना सिर्फ ये कि हम खैर की फसल पैदा करने के काबिल हो जाते हैं, बल्कि हमारे अंदर जो ग्रजिस होते हैं, गुस्से की चीज़ें और हमें दुख देती हैं जो चीज़ें और दूसरों को हम जिन चीज़ों से दुख देते हैं, वो सब चीज़ें भी अल्लाह ताला के हुक्म से हमारी ज़िंदगी से निकल जाती हैं और फिर हम संजीदा हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि जैसे एलोपैथी इलाज होता है ना, उसमें कहते हैं कि बीमारी दब जाती है, वक्ती तौर पे अंदर जाए, जलती है, जलाते हैं, कुछ ना कुछ करके उसको ख़त्म कर देते हैं। जबकि होम्योपैथी तरीका इलाज में क्या होता है कि बीमारी बाहर आती है, देखा होगा आपने, सुना होगा, आप तो पता नहीं लोग करते भी हो इलाज के नहीं, लेकिन बड़े बूढ़े आज भी जो नेचुरल चीज़ों को लेना चाहते हैं वो वही करते हैं। वो उसमें क्या होता है, नंबर एक सब्र बहुत चाहिए, तवील अरसा चाहिए होता है। फिर तीसरी चीज़ उसमें क्या होती है कि बहुत सारी बीमारी जो पहले नहीं थी वो होती है, वो कहते हैं जिस्म के अंदर से गंदगी बाहर आ रही है, और हकीम भी तो ऐसी तरीका इलाज इख्तियार करते थे ना, खूब निकलते हैं बाहर का जिस्म, स्किन पे गंदगी आई, फिर एकदम जब ठीक होती है तो वो अंदर से जड़ों से पाक हो जाती है। यही तज़किए का अमल है जो कुरान के साथ होता है। हम जब कुरान पढ़ते हैं तवील लगता है, हमें सब्र करना पड़ता है, लेकिन उसके अंदर हमारे बहुत सारे ऐब खूब निकलते हैं बाहर। कोई थोड़ा सब्र तो नहीं किया इन पिछले 18 महीनों में, कई मौके ऐसे आए कि बस आज के बाद मैं नहीं इस कुरान की बात सुनूंगी, ये तो मुझे शर्मिंदा करता है। कई लोग कुरान को फेस नहीं कर सकते, सिर्फ इसलिए दूर भाग जाते हैं, लेकिन फिर किस्मत अच्छी सी अल्लाह हमें ले आया, चलो जो भी है चेक कर लेती हूँ ये बात कहता सच है कि गलत है। अल्लाह तो कहते हैं कि फी ही ज़िक्रुकुम, ये तुम्हारी किताब है, हाज़ा किताब यंतिकु बिल हक, ये किताब है जो हक के साथ बोलती है। अब ठीक है हक कड़वा हो सुनना तो पड़ेगा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर ये बात है ठीक कर लो, ये बताती भी तो किसी को नहीं है ना, और तुम्हें ही बताती है, और उसके बाद इंसान ठीक हो जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता निकलता है। आप वो वक्त जब आप शौरी तौर पर कुरान से नहीं जुड़े हुए, कोई अपनी पुरानी डायरी या दोस्तों की गुफ्तगू के सिलसिले में अपनी बातों को यादाश्तों में महफूज कर लें, अब इस तय जो सबसे पतली तय है, अभी तो कुछ किया ही नहीं आपने, इसके बाद आप अपने ज़रा अखलाक और किरदार का जायज़ा लें और ख़ुद से पूछें कि मेरे में क्या तब्दीली आई है, इस पहले सफ़र ने मुझे क्या दिया। फिर अगले में लिखिए, दौरे कुरान में फिर लिखिएगा, फिर तीसरे में लिखिएगा। आप 3 साल बाद अपने आप को पहचानेंगे नहीं, ये मैं आपको पूरे शऊर और यकीन से कहूंगी। कोई इंसान एकदम नहीं संवरता, तज़किया एकदम नहीं होता, शर्त एक है कि आप संजीदा रहें। आप अपनी इसलाह की नीयत से दूसरों की इसलाह शुरू करें, आपके अंदर आजजी हो, आप अपना दिल खोल दें इस किताब के आगे। वलअर्दिज़ात सद की तरह इन्नहु लक़ौलुन फ़सल, ये किताब पढ़ते जाएं और फैसले करते जाएं, फैसलों की किताब है ये। मुश्किल बहुत है, जख्म के ऊपर जब टंक्चर लगता है चीखें निकल जाती हैं, लेकिन लगाना पड़ता है। और ये क्यों ना हो, वह माह हुआ बिल हज़ल, अल्लाह ताला कहते हैं हंसी और बेफायदा चीज़ तो नहीं है, तुमने क्या समझा था इसको, हंसते खेलते कुरान पढ़ देंगे, एक सफ़ारा तुम पढ़ो एक मैं पढ़ूंगी, एक सफ़ा तुम पढ़ लो आखिर में एक मैं पढ़ लूंगी, क्या तुमने इसको खेल कूद समझा, ये मजाक की चीज़ है। वमा हुआ बिल हज़ल, और हज़लुन जिद्दुन की जिद है, जिद कहते हैं कसद और इरादे को, और हज़ल कहते हैं बेमकसद बे इरादा, यानी एक वाज़े मकसद की हामिल किताब है। लहव लाभ की तरह बेमकसद नहीं है कि चुंगम भी चबाते जाओ और कुरान भी पढ़ते जाओ, तुम्हारी नज़रें इधर उधर घूमती रहे, महफिल को भी देखते रहो, आने वालों को भी देखो, जाने वालों को भी देखो, और फिर उसके बाद तुम पढ़ भी लो, ये नहीं हो सकता। हाउ इज़ इट पॉसिबल, तुम कैसे सोचते हो कि ये किताब तुम गैर संजीदगी से पढ़ो और ये तुम्हें संजीदा कर दे, ये कभी नहीं होगी, ये बहुत संजीदा किताब है। और हकीकत है कि हंसने हंसाना लोगों को अच्छा लगता है, ऐसी महफिलें भी बहुत अच्छी लगती हैं जहाँ ये सब करने का मौका मिले, लेकिन उसकी तासीर नहीं होती। और इंसान को मुंह हाथ बंद करके 2-3 घंटे बैठना पड़े, मुश्किल तो लगता है, लेकिन फ़ायदा ही इसका, सब्र आता ही इसी से, कम बोलने की आदत आती ही इसी से, सेल्फ कंट्रोल आता ही इसी से, आजजी आती इसी से। और रह गए वो लोग जो आपकी दुश्मनी कर रहे हैं, तो इन्नहुम यकीदून, अलबत्ता ये काफिर मकर कर रहे हैं आपके खिलाफ चालें चल रहे हैं, इन्नहुम यकीदून कईदन, और ये काफिर तो दौर घात में बैठे हुए हैं, कोई बात नहीं वह अकीदु कईदा, और मैं भी तो एक चाल चल रहा हूँ, मैंने भी तो एक ऐसी ही कोशिश की है। फमहिलिल काफिरीन अमहिलहुम रुवईदा, तो काफिरों को मोहलत दे दो, इन्हें थोड़े दिनों के लिए छोड़ दो, इनको छोड़ दो, यानी थोड़ा सा और खेल कूद कर लें। ए नबी, जो दीन हक आप लेकर आए हैं, ये इसको नाकाम करना चाहते हैं, आपको कत्ल करना चाहते हैं, आपको धोखे देते हैं, फरेब देते हैं, आपके मुंह पर ऐसी प्यारी प्यारी बातें करते हैं जबकि इनके दिल में आपके बारे में इतनी नेगेटिविटी है, बस आप इनको छोड़ दें। मैं इनकी चालों और साजिशों से गाफिल नहीं हूँ, मैं भी इनके खिलाफ तदबीर कर रहा हूँ और इनका तोड़ कर रहा हूँ, तुम भी करो। ये जो लफ्ज़ है ना कईद, खुफिया तदबीर को कहते हैं, चाल के मानों में, बुरे मकसद के लिए हो तो बुरी और अच्छे के लिए तो अच्छी, और जब अल्लाह ताला के लिए लफ्ज़ कईद आता है तो मकर से ज़्यादा तदबीर के लिए आता है। और ये जो कहा गया ना कि आप थोड़ा सा सब्र कर लें, फमखिल काफिरीन अमहिलहुम रुवईदा, तो मतलब यह है कि ए नबी जल्दी ना कीजिए कि मैं इनको फ़ौरन पकड़ूँ। अल्लाह के नबी कहते थे ना कि अल्लाह ताला अगर ये गलत करते हैं तो इनको फिर पूछ, फिर इनसे हिसाब ले, का ताजील अजाब का मेरे से सवाल ना करो कि मैं इनको जल्दी से पकड़ूं। ये भी मेरी एक तदबीर है कि अभी इनको नहीं पकड़ूंगा। रुवैदा का जो लफ्ज़ है ना, कलीला या करीबन, दोनों मानों में, यानी थोड़ी सी या करीब की, असल में यह अल्लाह ताला का कानून इमहाल है, इस्तिदराज भी हम कह चुके हैं पीछे इसको, सूरत अल आराफ आयत 182 और 183 में हम पढ़ चुके, सनस्तदरिजुहुम मिन हैसु ला यालमून व उमली लहुम इन्न कैदी मतीन, का लफ्ज आते हैं कि हम इनको वहां से पकड़ते हैं जहां से इनको अंदाजा भी नहीं, और मैं इनको मोहलत देता हूँ, बेशक मेरी चाल बहुत स्ट्रांग है। तो क्या पता चला इस बात से कि अल्लाह तुमसे गाफिल नहीं है, जो तुम कर रहे हो उसकी नजरों में हो। आप देखें ना, पूरी सूरत पे नजर डाल के देखें तो क्या बताया, आसमान की कसम, रात को आने वाले की कसम, चमकते हुए सितारे की कसम, और तुम जो कर रहे हो इस दुनिया में उसको ऐसे ना समझो, हमने तुम सबको अपनी नज़रों में रखा हुआ है, तुम हमारी कस्टडी में हो, हमने तुम पर कैमरे फिट किए हुए हैं। वो कहते हैं ना कि कैमरे की नज़र आपको देख रही है, तो इन कुल्लु नफ्सिल लम्मा अलैहा हाफिज, हर बंदे पे कैमरा लगा हुआ है, जरा अपने अंदर भी एक कैमरा लगा के देखो कि फल जनजोर इंसान ने मिम्मा खुलिक, पैदा किस चीज़ से किए गए हो, खुली का मिम्मा आइंदा आफिक, एक पानी से जो उछलता हुआ, यखरुज मिन बैनि सुल्बि वत्तराय, बाप की पुश्त और माँ के सीने से निकला, इन्नहु ला रजीही लकादिर, क्या वो उसको दोबारा पैदा करने पे कादिर नहीं, कौन सा दिन, यौम तुबलस सराइर, इधर रुक जाता है बंदा, हाय मेरे राज खुल जाएंगे, मेरे चेकअप्स होंगे, मेरी स्क्रीनिंग होगी, हाँ कफमा लहु मिन कुव्वतिन वला नासिर, और स्क्रीनिंग भी जब होगी उस वक्त अकेले हो गए, कोई शौहर साथ नहीं खड़ा होगा उस वक्त, और कोई तुम्हारा प्यारा तुम्हारी मदद करने के लिए बीच में नहीं होगा, और ना यकीन आए तो अपनी हकीकत को देख लो कि बस समाई जात रज, आसमान जो वापस पलट पलट कर बारिश लाता है, मौसमों की सूरत में, सीजन्स की सूरत में, कभी बरसात की सूरत में, बारिशें कैसे आती जाती रहती हैं, एक दफ़ा बरस जाती तो फिर कहाँ से लाते, मौसम भी पलटती है, बारिश भी पलटती है, कभी भाप बनता है कभी कुछ, तो जब ये सब है तो तुम इस पे गौर नहीं करते, वल अर्दी ज़ात सद, ज़मीनें जब फाड़ के अपना सीना अंदर से तुम्हें फसलें देती हैं, तो क्या तुम अपने आप को थोड़ा सा मुश्किल में डालकर इंसान को खैर नहीं दे सकते, और क्या वो ज़मीन कल तुम्हारे मुर्दों को नहीं फाड़ के निकाल देगी, फैज़ल क़ुबूर वो सीरत में पीछे पड़ भी चुके हैं, तो बस फिक्र ना करो, असल में अपनी इसलाह कर लो, तिलावत सुनते हैं और इंशाल्लाह इन चीज़ों पे गौर करेंगे, और साथ ही साथ अपने आप को फिर मुहासबे के लिए पेश करेंगे। देखिए जब तक तज़कीर के साथ साथ तज़किया नहीं होगा, बात नहीं बनेगी, हम अपने आप को बहुत अच्छा समझेंगे ना, तो फिर हम कभी भी गौर व फिक्र नहीं कर सकेंगे, और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम इन चीज़ों को पढ़ें तो उस वक्त साथ साथ दुआएं भी मांगें कि अल्लाह अगर अभी भी अंदर आलाइशें हैं, और अभी बहुत हैं, अभी तो कुछ हुआ भी नहीं सच्ची जो बात है, तो ऐ अल्लाह तो हमारी इसलाह भी फरमा, और तो हमें अपने आप की इसलाह करने की तौफीक भी अता फरमा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا
جی آپ بتائیے کوئی اپنا عمل یاد آیا ہم تھوڑا سا اس پہ اپنا محاسبہ کرتے ہیں نا کہ جب ہمیں یہ پتہ کہ قیامت کے دن ہمارے چھپے ہوئے راز کھلیں گے تو کوئی خاص گناہ اس وقت ہمیں اپنا یاد آتا ہے کوئی عمل کوئی واک کوئی ایسا ایکشن بس اس کو نوٹ کر لیں یاد رکھیے کہ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے چوکی دار تو بٹھایا ہوا ہے نا ہر انسان دوسروں کی نظروں میں جتنا مرضی بڑا بن جائے لیکن وہ اپنی نظروں میں اپنی اصل نہیں چھپا سکتا کہاں پڑھ چکے ہیں یہ بات کسی کو یاد ہے سورت قیامت کیا پڑھا تھا نفس نفس لوامہ کی بات پڑھی تھی نا اس میں کیا کہا تھا آگے اس کے آگے کیا تھا ابھی اتنی تیز تیز نہیں چل رہا نا مائنڈ چلیے اس میں عذر کی بات تھی بل الانسان علی نفسہ بصیرا ولو القا معاذیرا بلکہ انسان اپنے نفس کو خوب دیکھنے والا ہے چاہے دوسروں کے سامنے عذر پیش کرے کہ میں بہت اچھی ہوں تو لہٰذا ہر بندہ اپنے اوپر غور کرے تو اس کو اپنی اصل یاد آتی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا ہوں اور اگر آپ کے اندر کوئی بہتری آتی ہے تو کسی کو بعد میں پتہ چلتا ہے آپ کو پہلے پتہ چلتا ہے کوئی آپ کو برا کہے تو آپ اس کو کہتے ہیں تمہیں کیا پتہ میرے اندر کیا ہو رہا ہے تمہیں کیا پتہ میں کتنی کوشش کرتی ہوں، تمہیں کیا پتہ میری اپنے رب کے سامنے کتنی آہوزاری ہیں. تو ہر بندہ اپنے آپ کو اگر سامنے رکھے تو بات سمجھ آتی ہے. اور کوئی نقطہ اس صورت کے اندر جو آپ کے ذہن میں رہا؟ مجھے یہ جو نگہبان کی بات ہے نا، ہمارے اوپر حافظ ہے، تو اس پہ صورت انفطار میں ہم نے پڑھا تھا نا، ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین، ابھی پیچھے ہی تو پڑھ چکے ہیں نا کہ تم پر نگہبان ہیں، لکھتے ہیں. کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوسروں کے سامنے پیش کر دیا. یہ الگ بات ہے کہ ہماری چیزیں صرف ہمیں ہی بتائی جاتی ہیں، دوسروں کو نہیں بتائی جاتی. اور کوئی چیز، وما ہوا بالحزل، یہ کھیل نہیں ہے. اور یہ سچ ہے کہ یہ کھیل نہیں ہے. اور یہ نہیں آپ نے دیکھا انہو لقول فصل، یہ فیصلہ کن بات ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ قرآن کے متعلق آپ نے فرمایا، کتاب فیہ خبر ما قبلکم وحکم ما بعدکم وہو الفصل لیس بالحزل، یعنی یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں تم سے پہلی امتوں کے حالات اور خبریں ہیں، اور تمہارے بعد آنے والوں کے لیے احکام ہیں، اور وہ فیصلہ کن قول ہے، ہنسی مذاق نہیں ہے. تو اس قرآن کو کبھی ہنسی مذاق نہیں بنانا، بہت دل سخت ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے، ہر مومن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 160 فرشتے اس کی حفاظت پر مقرر ہیں، جو انسان کے ہر ہر عضو کی حفاظت کرتے ہیں. ان میں سے 7 فرشتے صرف انسان کی آنکھ کی حفاظت کے لیے مقرر ہیں. یہ فرشتے انسان سے ہر بلا اور مصیبت جو اس کے لیے مقدر نہیں، اس طرح انسان سے دفع کرتے ہیں جیسے شہد کے برتن پر آنے والی مکھیوں کو پنکھے وغیرہ سے دور کیا جاتا ہے. اور اگر انسان پر یہ حفاظتی پہرہ نہ ہو تو شیاطین اس کو اچک لے. یعنی ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ حفاظت کہاں کہاں سے کی کرائی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کروا دیتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کہاں سے آئے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ یہ جو بات ہے نا، یوم تبل السرائر، تو اس کے اندر انسان کو ایک اور فیلنگ بھی دی جا رہی ہے، اور وہ کیا ہے کہ اس سے پہلے کہ قیامت کا دن آئے اپنے سینوں کو صاف کر لو. جو کل نہیں دکھانا آج نکال دو. آپ اس کو ایسے سوچئے، جیسے میرے ذہن میں ایک چیز آتی ہے کہ گھر میں کچھ نہ کچھ چیزیں تو ہوتی ہیں نا ایکسٹرا، تو ایک تو کہ آپ ان کو ٹھیک طریقے سے سنبھال کے رکھ دیں ان کی جگہ پہ. تو سب کو پتہ ہوتا ہے گھروں میں یہ چیزیں تو ہوتی ہیں. اگر بالفرض کسی نے آپ کا کلوزٹ دیکھ بھی لیا اور اگر آپ کی الماری کھول بھی لی تو اٹس اوکے، ہیں چیزیں لیکن سلیقے سے رکھی ہوئی ہیں. لیکن اگر کوئی ایسی چیزوں کو پکڑے اور ایک کونے میں ڈال کر اس پہ چادر ڈال دے اور لائٹ بند کر دے، اور اگر کسی نے چادر ہٹا دی اور لائٹ کھول دی، تو پھر کیا ہوگا؟ شرمندگی ہوگی نا. تو آج دنیا میں چیزوں کو الگ ادھر ادھر کر دیں تو بات واضح ہو جائے گی. اس آیت پہ حضرت ابن عمر نے کہا، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز انسان کے ہر مخفی راز کو کھولے گا، ہر اچھے برے عقیدے اور عمل کی علامت انسان کے چہرے پر یا زینت ہو کر یا ظلمت اور سیاہی کی صورت میں ظاہر کر دی جائے گی. یعنی اس دن تو کھلنا ہے، تو کھل تو ویسے سچی بات ہے دنیا میں بھی جاتا ہے، چہروں پہ اللہ کی طرف سے ایک رنگ آنے لگتا ہے. آپ دیکھیں جو پکا نمازی ہوگا اس کے چہرے پہ ایک چمک ہوگی، اور جو شرابی ہوگا یا شرک کرنے والا ہوگا اس کے چہرے پہ ایک عجیب پلاہٹ اور ایک کسل مندی سی ہوگی. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس دن کی رسوائی سے بچائے، اور ہم اپنی اس دنیا میں اصلاح کریں. کسی کو پتہ چلے کہ اس کے جسم میں کوئی بیماری ہے اور وہ بیماری پھر آشکار ہو جائے، اس سے پہلے کہ آپ علاج کریں وہ بہت ہی خراب ہو جائے، تو بہتر ہوتے ہیں وہ ٹیسٹ جس میں بیماریوں کا پتہ چل جائے اور آپ اپنا علاج شروع کروا لیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.